यशोदनन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रज जन रञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो फोर्थ चैप्टर 29 एंटाइटल टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्राचीनी बरही टेक्स्ट नंबर 56 राज उवाच श्रुतम अन्विक्षितम ब्रह्मन् भगवान यद अभाषत नैते जनन्ति उपध्याया किम न ब्रुहर विदुर यदि राज उवाच श्रुतम अन्विक्षितम ब्रह्मन् भगवान यद अभाषत नैतज्जनन्ति उपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर् यदि राज उवाच श्रुतम् अन्विक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यद् अभाषत नैतज्जनन्ति उपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर् यदि राज उवाच श्रुतम् अन्विषितं ब्रह्म राज उवाच श्रुतम् अन्विक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यद् अभाषत नैतज्जनन्ति उपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर् यदि राज उवाच श्रुतम् अन्विक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यद् अभाषत नैतज्जनन्ति उपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर् यदि माताजि राज उवाच श्रुतम् अन्विक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यद् अभाषत नैतज्जनन्ति उपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि रीडिंग हिंदी इंग्लिश हिंदी तो अचानक से क्लास दे रहा हूँ, ऊपर से लैंग्वेज अचानक चेंज करने के लिए बोला डिवोटीज, तो भक्तों की खुशी के लिए रेगुलर इंग्लिश में कथा होती है तो हिंदी में हम प्रयास करेंगे। राजा उवाच, राजा ने कहा, श्रुतम सुना गया, अन्वीक्षितम विचार किया गया, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, भगवान अत्यंत शक्तिमान, यत जो अभाषत तुमने कहा है, न नहीं, एतत यह जानती जानते हैं, उपाध्याय कर्मकांड के शिक्षक, किम क्यों, न ब्रियो उन्होंने शिक्षा दी नहीं दी, विदु वे जानते थे, यदि अगर। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसे भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है और सम्यक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन आचार्यों ने शिक्षकों ने मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त किया है वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि वे इससे अवगत थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। तात्पर्य, वास्तव में भौतिक समाज के तथाकथित शिक्षक या अग्रगण्य लोग जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ठीक से नहीं जानते। ऐसे लोगों को श्रीमद् भगवद गीता में माया अपरहत ज्ञाना कहा जाता है। वे अत्यंत विद्वान प्रतीत होते हैं किंतु वास्तव में माया के प्रभाव से उनका ज्ञान हर लिया गया होता है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की खोज। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यः, सारा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की खोज करने में के निमित्त है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के मूल हैं। जन्मादि यतो अन्वयादि तरश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट, तथा श्रीमद् भगवद गीता के भी 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि अहम आदिर अहिदेवानाम, मैं समस्त देवों का स्रोत हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के मूल तथा आदि स्रोत हैं। श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जिनमें ब्रह्मा शिव इत्यादि सम्मिलित हैं, वैदिक अनुष्ठान विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु है, किंतु जब तक कोई प्रगतिमान विद्वान नहीं होता वह यह नहीं समझ पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, श्री नारद मुनि के उपदेशों को सुनकर राजा बहिष्मान को चेत हुआ, जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति प्राप्त करना ही है। अंततः राजा ने तथाकथित पुरोहिती आदेशों को नकार देने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनमें जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई शिक्षा न दी जाकर अनुयायियों को केवल अनुष्ठानों में लगाया रखा था। आज के समय में संसार भर में गिरजाघरों मंदिरों तथा मस्जिदों के प्रति लोग आकर्षित नहीं होते, क्योंकि मूर्ख पुरोहित अपने अनुयायियों को ज्ञान के स्तर पर उन्नत नहीं कर पाते हैं। जीवन उद्देश्य से परिचित रहने के कारण वे अनुयायियों को अंधकार में रखते हैं, फलतः जो सचमुच शिक्षित हैं वे अनुष्ठानों के प्रति अरुचि रखने लगे हैं, किंतु साथ ही वे वास्तविक ज्ञान से भी वंचित रहते हैं। अंततः समस्त वर्गों के लोगों को जागरूक करने के हेतु यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज बरिष्मान के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए और उनके अनेक धर्मों के वेश में चलने वाले रूढ़िगत अनुष्ठानों का परित्याग करें। गोस्वामी लोग प्रारंभ से ही उन पुरोहितों से भिन्न थे जो केवल अनुष्ठानों में लगे रहते थे। वास्तव में श्रील सनातन गोस्वामी ने ही वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरिभक्ति विलास का संग्रह किया है। वैष्णव लोग पुरोहितों के निर्जीव कार्यों की परवाह न करके पूर्णतः कृष्ण भक्ति करते हैं और इसी जीवन में पूर्ण बनते हैं। इसका वर्णन पिछले श्लोक में परमहंस शरणम अर्थात परमहंस की शरण लेने और इस जीवन को सफल बनाने के रूप में हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिताश्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आशीर्वाद दें कि मैं कुछ श्रीमद् भागवतम के गुणगान के लिए कह सकूं और आप सब भक्तों की सेवा कर सकूं, क्योंकि सारे नोट्स इंग्लिश में हैं, भागवतम इंग्लिश में है, कथा हिंदी में करना है और प्रिपरेशन कल के क्लास का था। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग है। जब श्रील नारद मुनि प्राचीन भरीषित को पूरी पुरंजन की कथा बताने के बाद, एलेगोरिकल स्टोरी पूरा खत्म होने के बाद, पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि जो भी कर्म कांड और ज्ञान कांड है उसका परिणाम वास्तविक रूप में भगवान का भक्ति नहीं होता है तो वो भी व्यर्थ है। तो रिचुअलिस्टिक सेरेमनी जो भी है, इफ दे डू नॉट कल्टिवेट इनटू द प्योर डिवोशनल सर्विस देन दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो कुछ पिछले श्लोकों में हमने उसको अच्छे तरीके से देखा था और कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार नारद मुनि एक ऐसे गुरु के रूप में वहाँ पर खड़े हैं जब उन्होंने देखा कि जो शिष्य है वो सारी सूचनाओं को सुन तो लिया लेकिन वास्तव में पालन नहीं कर रहे हैं और अभी वो शिष्य उसका कारण भी बता रहे हैं कि क्यों सब मैंने सुना लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि उनके जीवन में अनेक सारे शिक्षक वहाँ पर आए हैं। तो जैसे कि हम शास्त्रों के आधार पर देखते हैं कि जैसे ही मनुष्य देह प्राप्त होता है तो हमें गुरु प्राप्त हो ही जाता है। वास्तविक में हम आने से पहले गुरु यहाँ पर हैं, हमारे आध्यात्मिक रूप से जो भी गुरु हमारे हैं वो भी हैं और बहुत सारे जीव जो हमारे गुरु बनने वाले हैं वो हमारे पहले भी आ चुके हैं, बाद में भी आएंगे। कोई ना कोई व्यक्ति, प्राणी या भगवान का यह प्रकृति गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। तो हर व्यक्ति को जो है मार्गदर्शक जो है इस विश्व में तैयार है, बस खोज है हमारी या कि आवश्यकता है हमारे की, हमारी प्रामाणिक इच्छा होना चाहिए कि हमें क्या जानना है। तो उस प्रकार से भगवान जो है गुरु का व्यवस्था करते हैं कि हम कुछ भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते उस प्रकार से। अब यहाँ पर प्राचीन भरी खुद राजा है और बहुत सारे वैदिक पंडितों को उन्होंने नियुक्त किया है कि वो उन्हें राज्य चलाने के लिए और सारी व्यवस्था चलाने के लिए मार्गदर्शन करें, और साथ ही साथ सारे राज्य का आध्यात्मिक प्रगति है वो भी उसके आधार पर हो सके। परंतु आज के प्रसंग में राजा जो है देख रहे हैं कि नारद मुनि तो मुझे सब त्याग करने को बोल रहे हैं और मेरे अभी तक के कोई भी शिक्षक या पुरोहितों ने ऐसी कोई बात अभी तक बताई नहीं। जो भी शिक्षक थे इस प्रकार से कुछ समझा देते जिसमें भोग विलास भी सम्मिलित हो, मेरी सारी खुशियां भी उसमें सम्मिलित हो, और साधारण तौर पर जो राज्य है वो ठीक ठाक चल रहा है और सब लोग भ्रम में ही, अभी का तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुंदर जो गीता का रेफरेंस माया पर हता ज्ञान, कि जिनका ज्ञान जो है माया के कारण हरने के कारण वो वास्तविक ज्ञान के बारे में मुझे नहीं बताए, और इसलिए आपने जो बताया और उन्होंने जो बताया इसमें मैं अभी आगे प्रश्न पूछेंगे नारद मुनि कि वास्तविक में मुझे अभी क्या करना चाहिए, और मेरे और भी कुछ प्रश्न है, वो भी प्रश्न अभी प्राचीन भरी जो है नारद मुनि को पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार जीवन में जो है पग पग पर हमें गुरु की आवश्यकता है, और जो ढोंगी गुरु बोलने की जगह गौरांग प्रभु बोलते कि ढोंगी कोई ऐसा गुरु नहीं होता है, एक तो वो गुरु है या फिर ढोंगी है। ऐसा ढोंगी गुरु कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि वो तो गुरु है तो वास्तविक रूप में हमें मार्गदर्शन कर रहा है, अगर नहीं है तो वो ढोंगी है, उसको ढोंगी गुरु कहने की जरूरत नहीं, वो ढोंगी है। तो इस प्रकार से हमें इस तात्पर्य से एक चीज महत्वपूर्ण समझ में आती है कि जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो हमें अलग अलग प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, परंतु हम जब तक वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तीव्रता नहीं रखते, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमें भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड, कि विश्व में बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो खुद ही नहीं जानते कि वास्तविक ज्ञान क्या है, तो बाकी लोगों को किस प्रकार से वो मार्गदर्शन करें कि वास्तविक ज्ञान क्या है। भगवद्गीता भी हमें समझाती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्येण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्तत्व दर्शन। जब तक व्यक्ति स्वयं तत्व दर्शन नहीं है, उसे ही तत्व क्या है समझ में नहीं आता, तब तक वो दूसरे को नहीं समझा सकता है। और वही चीज यहाँ पर प्राचीन भरी समझा रहे कि सारे शिक्षक पुरोहितों ने मुझे कभी समझाया नहीं कि यह कर्मकांड और ज्ञान कांड करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, या वो केवल इतना ही समझाते गए यही करते रहो यही जीवन है, तो मुझे जो है भ्रमित करते गए। पहले ही विश्व पूरा भ्रमित करने वाला है, उसमें जब गुरु भी भ्रमित करते हैं तो और भी हम भ्रम में चले जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि किस प्रकार ये पूरा जो विश्व है बहुत बड़ा भ्रम में हमें डालते रहता है, और भगवान के जो भ्रमण में डालने वाली शक्ति है बहुत क्रियाशील होती है। तो कहते हैं कि मूल रूप से हम जब शरीर प्राप्त किए तो हम डे ड्रीम्स देखते रहते हैं, दिन में सपने देखते रहते हैं कि अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इधर का इंचार्ज हूँ, वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। तो पहला तो ड्रीम में जीते रहते हैं, भ्रम में जीते रहते हैं, और उस भ्रम में और एक रात को अलग भ्रम रहता है हमारा कि एक तो शरीर के साथ भ्रम में है हम कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और उसके बाद सो जाते हैं तो और कोई ड्रीम देखते हैं कि भ्रमित अवस्था में दूसरी भ्रमित अवस्था में हम चले जाते हैं कि डे ड्रीम्स अलग देखते हैं बॉडी के साथ कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और जब सो जाते हैं फिर मन जो है हमें और कोई दुनिया में लेके जाता है जिसमें हम राजा ही नहीं और कुछ पूरे विश्व के मालिक भी बन जाते हैं, और कभी सारे इंद्रिय तृप्ति के साधन भी उपलब्ध करवा लेते हैं और क्या क्या करते हैं पता नहीं। तो पहले ही दिन का सपना शरीर के साथ चल रहा है और फिर रात के सपने में और सपने में भ्रमित अवस्था में जाते हैं। तो डे ड्रीम और नाइट ड्रीम है, बॉडी के साथ जो है हम डे ड्रीम करते हैं, मन के साथ जो है नाइट ड्रीम्स करते रहते हैं और उसी प्रकार जीवन जो चलते रहता है। और जो दिन का सपना है वो तो शरीर के साथ खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही शरीर खत्म हुआ तो जो भी दिन के सपने हमने देखे हैं, जो भी मैं हूँ, वो तो शरीर खत्म होते ही सारा नष्ट हो जाता है। और जो रात का स्वप्न है वो तो रात खत्म होते ही खत्म हो जाता है। सुबह जैसे उठते हैं तो पता चल जाता है कि मन ने जितने भी नियोजन किए हैं सपने में, वो तो जैसे उठ जाते पता चल जाता है कि अरे मैं तो कुछ ऐसा हूँ नहीं। तो दिन और रात दोनों समय हम एक भ्रमित अवस्था में जीते रहते हैं। और ये जो पुरोहित या ब्राह्मण जो वास्तविक ज्ञान नहीं देते, वो हमें और भी पुष्टि देते हैं कि चलो इसी भ्रमित अवस्था में जीते रहो। आज का जीवन अगर हम देखते रहेंगे तो समय के साथ केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं, हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि वास्तविक जीवन एक है और दिखाने के लिए कुछ और दिखाया जाता है। और विशेष करके विज्ञान के नाम पर, विकास के नाम पर वास्तविक जीवन से अधिक दूर लेके हमें जाया जा रहा है हर व्यवस्था में। हमारे एक भक्त बता रहे थे, कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं है, खेती करता हूँ तो बहुत सारा थोड़ा बहुत चीज़ जानता हूँ, लेकिन भक्तों से जब सुनता हूँ तो अभी अभी इतना भ्रमित अवस्था में लेके जाते हैं कंप्यूटर के दुनिया में, कंप्यूटर एक्सपर्ट वो गुरु है उधर के, तो लोगों को इतना भ्रम बना देते हैं कि अभी आजकल डेस्कटॉप में इस प्रकार से आता है कि आप एक आर्टिफिशियल एक्वेरियम देख सकते हैं, कि आप ऐसा बैठे बैठे ऐसे लगेगा आपके बस मत्स्यालय में आप बैठे हुए हैं, और फिर थोड़ा समय के बाद आपको लगेगा वो मछली आई है, उसको भूख लगा है, थोड़ा आवाज़ करेगी तो आपको पता चलेगा हाँ चलो इसको भूख लगी है, तो कुछ बटन दबा ठक तो तुरंत कुछ तो खाना गिर जाएगा और वो मछली आके खाएगी, फिर वो हंसने लगेगी, आपको लगेगा हाँ खाना खिला दिया मैंने इसको, और कुछ समय जाएगा और कुछ समय के बाद वो फिर से उसको भूख लगा है कुछ तो इंडिकेशन टैंग करके आवाज़ आएगा, आपको पता चलेगा कि अभी इसको भूख लगा है, फिर से बटन दबा ठक फिर से खाना छोड़ेगा। और सब कुछ कृत्रिम है, कुछ भी ना खाना वास्तविक में जा रहा है ना मछली वहाँ खाने वाली है, बट आपको इस प्रकार से कृत्रिम तरीके से दिखाया जा रहा है कि आपको लगेगा बस मैं मछली को रोज खाना, जब भी उसको भूख लग रहा है खिला रहा हूँ और वो खुश है मेरे खाना देने के कारण, और वास्तविक में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो कृत्रिम आर्टिफिशियली उस स्क्रीन को इस प्रकार से बनाया है कि आप उस अवास्तविक जीवन को वास्तविक पकड़ते हैं और रोज अपना बहुत सारा समय उसी स्क्रीन के सामने देते रहते हैं, और वो खुशी कि मछली मेरे हाथ से खा रही और खुश है उसमें आनंद रहते, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पता है इसको इसमें खुशी ज़्यादा आता है। कोई व्यक्ति आएगा कुछ मांगेगा तो नहीं खिलाएगा, बट स्क्रीन में उसको अगर मछली कुछ मांग रही है और खाने के बाद खुश हो रही तो देता रहेगा, दिन भर देगा, कभी वो मांग भी नहीं रही तो बटन दबा के बोला और खा ले बोले मेरे को अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार इतनी भ्रम की अवस्था में हम चले जाते हैं कि वास्तविक जीवन से धीरे 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 हम दूर जाते जा रहे हैं, और ये तंत्र ज्ञान टेक्नोलॉजी है वो हमें और भी भ्रमित करते जा रही है। मैं कभी कभी प्रचार करते समय स्कूल में जाते रहता हूँ तो बच्चों को पूछते रहता हूँ कि भाई जैसे बहुत साधारण उदाहरण हम जब शास्त्र से सुनते हैं कि भीमसेन जो है उन्होंने उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, तो बच्चे बोलते कि ये सब प्रभु जी ऐसा सुनने के बाद लगता है कि शास्त्र सब झूठा ही है, ऐसा थोड़ा होता है एक आदमी है उसके अंदर 10,000 हाथी का बल कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ वो जब जाते हैं शक्तिमान देखते हैं तो खुद जाके कहीं भी पानी के टंकी के ऊपर रह के जंप मारने को तैयार है, बहुत सारे लोगों ने वैसे जान भी दी बच्चों ने। तो उनको पूछा गया कि आपको क्यों लगा कि आप शक्तिमान है, फिर जब भीम वास्तविक में शास्त्रों में एक चरित्र दिया है उसने ऐसा किया उसका भी सारा वर्णन है, वो आप मानने को तैयार नहीं, एक शक्तिमान नाम का कैरेक्टर कोई टीवी मीडिया वाले बनाया तो आपको लग रहा है कि वह वास्तविक है, आप खुद जाके टंकियों के ऊपर खड़ा रह के जंप करने को तैयार है, क्योंकि आपको लग रहा है शक्तिमान वास्तविक में वो कपड़ा पहन के मैं भी बच जाऊंगा या मैं भी शक्तिमान की तरह घूम सकता हूँ हवा में उड़ सकता हूँ। उतना नहीं, आजकल तो बहुत सारा हैरी पॉटर फिर धीरे धीरे अभी कुछ स्पाइडर मैन करके भी कुछ सीरियल आता है, सुना मैंने, कि जिसमें वो इतना शक्तिशाली व्यक्ति दिखाया जाता है कि उसके साथ सारे सिद्धि उसके पास है, जो चाहे वह कर सकते हैं। और वास्तविक में ऐसा कोई कैरेक्टर अस्तित्व में नहीं है, बट देख देख के बच्चे इतना उसको वास्तविक मान लेते हैं कि वास्तविक जीवन जीना छोड़ दे, उसमें ही आनंद लेते हैं। कुछ कुछ बच्चे वो छोटा छोटा सीरियल देखते हैं, मिकी माउस ये वो, तो इतना भ्रमित कर देता है कि वो छोटा सा कैट है वो बड़ा हो जाता है, फिर कुत्ता आता है उसके पीछे तो फिर डर जाता है, और फिर छोटा पाइप घर में जा रहा है वो पाइप के अंदर घुस जाता है, कैसे घुस जाता है पता नहीं, फिर कुत्ता आता है उसको देख के, अरे ये तो पाइप के अंदर घुस गई, फिर आगे से कहाँ से निकलेगे, वहाँ पे कुत्ता पहुँच जाता है, और फिर वो कैट जो है और छोटी साइज बन के छोटा नल के अंदर घुस जाती है, और ये भागते रहते हैं। और बच्चे इतना टाइम उसके साथ स्पेंड करते, इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि वास्तविक जो घर में कैट है या कुत्ता है उसको देखने को टाइम नहीं, उसको इसी में मजा आता है, और वो आनंद से उसमें जीते रहते हैं। तो इस प्रकार भ्रमित करने के लिए इतने सारे तंत्र ज्ञान, इतना विज्ञान प्रयास कर रहा है कि वास्तविक जीवन जीने से सबको वहां से दूर लेके जाया जा रहा है, और सबको भ्रम में रख के जीवन का ध्येय क्या है, उद्दिष्ट क्या है, उसके लिए समय ही नहीं मिल पाता है, और लोगों को उसी में आनंद है। सारे पुरोहित आजकल के सो कॉल्ड गुरु है इसी में लोगों को अटका के रखते हैं ताकि वो वास्तविक जीवन को समझे ही ना। श्रीमद् भागवतम भी इसी परिस्थिति का बहुत सारे उदाहरण देते कि किस प्रकार मनुष्य जो है इस प्रकार के गुरु मिलने के कारण इतनी भ्रमित अवस्था में जीते रहता है कि उसको वास्तविक जीवन का ज्ञान मिल ही नहीं पाता है। और बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण आते हैं किस प्रकार वो भ्रमित अवस्था में रहता है। एक तो उदाहरण जो पिछले कुछ श्लोकों में सुंदर एलेगोरिकल स्टोरी आती है हिरन की, कि वो बेचारा गार्डन में जाके घास खाने में इतना संतुष्ट है कि सामने बाघ आया वो खाने को, उसको टाइम देखने को नहीं है, पीछे से जो हंटर है वो भी मारने को तैयार, वो भी उसको देखने को तैयार नहीं है, वो तो घास खाना और सुंदर बगीचे में जो आवाज आ रहा है उसी प्रकार इतना खुश है। यही एलेगोरिकल स्टोरी को पारिवारिक जीवन से भी तुलना की गई है। तो हर केवल पारिवारिक जीवन ही नहीं है, हर साधु ब्रह्मचारी सबके लिए लागू होता है कि इस भौतिक जगत में आने के बाद जब भ्रमित अवस्था में हम चले जाते हैं तो इसी प्रकार भौतिक सुखों में इतने हम व्यस्त हो जाते हैं कि समय जो हमें पूरा मृत्यु के पास लेके जा रहा है उसकी तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, और सारे भौतिक चीज़ों में हम व्यस्त होते जाते हैं, और ये जो सो कॉल्ड गुरुज है वो भी हमें उसी दिशा में प्रयास करते हैं कि तुम भी यही करते रहो ताकि उनका रोजी रोटी चलता रहे। परंतु यहाँ पर जो प्राचीन वर्य हैं वो इस चीज़ को दूर करके अभी बोल रहे हैं कि अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि वास्तविक गुरु कौन है, और मेरे जो पुरोहित थे जो भी गुरु थे उन्होंने मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं दिया। और नारद मुनि भी एक उसी प्रकार के गुरु हैं जो जानते हैं कि अपने शिष्य को किस प्रकार से वास्तविक ज्ञान दिया जाए। और यहाँ पर विशेष करके जो कथा अभी आती है, हाँ, जिसे हम कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे, कि अभी तक समझ गए कि बहुत समझे इसको, बहुत समझे हैं, फिर भी जो चीज बतानी थी समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको भी धक्का मारना चाहिए। तो नारद मुनि डायरेक्टली इस मुद्दे पे आके टिक गए कि ये भ्रमित जीवन है, बस अभी छोड़ दो और भगवान का भक्ति में लग जाओ, उसके अलावा और कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भी उसी प्रकार के गुरु थे, जो वास्तविक में जो जीव के लिए आवश्यक है वो चीज उन्होंने देने का सदा प्रयास किया। तो बहुत बार प्रभुपाद जी के ऊपर अलग अलग तरीके से आरोप भी होते थे, जो सबसे प्रसिद्ध हम सुनते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी को कहा जाता था कि आप जो हैं सारे ये जो तरुण पीढ़ी हैं उनको बिगाड़ रहे हैं, उनको ब्रह्मचारी बना रहे हैं, अपने अपने माता पिता का सेवा छोड़ के अपने मंदिर में लेके जाके उनका बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं, या यू आर ब्रेन वॉशिंग द यंग जनरेशन। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रेम से गए कोर्ट में, जब गए तो हम उनको ब्रेन वॉश करने के लिए ब्रेन भी तो चाहिए, तो वास्तविक में हम ब्रेन वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, वी आर गिविंग द ब्रेन्स। उनको वास्तविक जीने का उद्दिष्ट क्या है, किसके लिए जीना चाहिए, ये सारा चीज़ हमें उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि हम उनका ब्रेन वॉश करें। हम तो उनको ब्रेन, वी आर द ब्रेन गिवर्स, हम उनको बुद्धि दे रहे हैं कि जीना किसके लिए चाहिए उसका वास्तविक उद्देश्य हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थ उसके उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर कथा आता है कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद एक गुरु की तरह हर समय जो भी उनके संपर्क में आता था उसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है वो समझाने का प्रयास करते थे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो जाते जाते सुबह सुबह जैसा उनका रूटीन था, काफ़ी शिष्य साथ में आते थे, तो पाश्चिमात्य देश में थे तो उनका लाठी लेके जा रहे थे, ठंडक इसी प्रकार का वातावरण ठंडी था, तो एक लेक रास्ते के बाजू में पानी का ये था और रास्ते के बाजू में तुरंत बहुत जब ज़्यादा ठंडी होती है तो आइस जम जाता है। तो प्रभुपाद जी देखते तो अपने शिष्य को सिखाने के लिए वहाँ पे अपने हाथ में जो लाठी था उसको लेके उस आइस को फोड़ने लगते हैं और शिष्य को पूछते हैं, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ में आया। तो शिष्य बोले कि ठंडी है, बर्फ दिख रहा है, प्रभुपाद के हाथ में लाठी फोड़ रहे हैं, तो प्रभुपाद आप जो उसको फोड़ रहे हैं। प्रभुपाद बोले दैट्स ओके, बट आप क्या समझ रहे हैं इससे। तो प्रभुपाद उसको और फोड़ने लगे, तो प्रभुपाद जी बोले अब आप अभी जोर से फोड़ रहे हैं, नहीं आपको क्या समझ में आया। तो शिष्य को समझ नहीं पा रहे थे, फिर प्रभुपाद जी बोले देखो जब मैंने जहाँ से जा रहा था लाठी से जब देखा तो वहाँ पे क्या था, पहले बर्फ था, अभी उसको मैंने फोड़ 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 के उसको धीरे धीरे वहाँ पे पानी बना दिया, क्या आपको दिख रहा है। बोले हाँ दिख रहा है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो जीव है इसी प्रकार से वो बर्फ की जो अवस्था है वो बहुत अनैसर्गिक अवस्था है, जब ठंडक बढ़ जाती है तो बर्फ हो गया, जैसे ठंडक कम हो जाएगी तो वो पानी हो जाएगा। तो नैसर्गिक जो स्वभाव है बर्फ का ये पानी का वो तरलता है, और जब अनैसर्गिक परिस्थिति में वो चला जाता है तो बर्फ बन जाता है। तो गुरु का कार्य है कि जब जीव भौतिक इच्छाओं के कारण, भौतिक आवरणों के कारण, भ्रमित होने के कारण अनैसर्गिक परिस्थिति में चला जाता है तो उसको फिर से नैसर्गिक स्थिति में वो लेके आए, मतलब वो बर्फ को उन्होंने काठी से थोड़ा ही सही लेकिन पानी बना दिया, जो अननेचुरल सिचुएशन थी उससे वो विरलता स्वरूप में उस बर्फ को लेके आए। तो वही गुरु का कार्य है, कभी कभी कठोरतावश ना सही लेकिन जीव को उसका जो अननेचुरल कंडीशन है वहाँ से उसका जो नेचुरल कंडीशन है भगवान की सेवा करना उस स्थिति में वो लेके आए। तो इसके लिए गुरु जो है सदा समय अपने शिष्य को कभी कठोरता पूर्वक, कभी प्रेम पूर्वक, जिस प्रकार की आवश्यकता उस प्रकार से अपने शिष्यों को वो उपदेश देते रहें जिससे वो भगवान की शुद्ध भक्ति के दिशा में आता रहे। तो इसके बारे में दो कथा मैं जस्ट बताऊँगा कि किस प्रकार गुरु जो है सदा अपने शिष्य का जो है हित चाहते हैं, और इसलिए वो जो भी आज्ञा देते हैं वो उसके हित के लिए है और उसके जो स्तर है उसका जो लेवल है उसके अनुसार होती है। तो कभी वो गलती से बोल नहीं सकते लेकिन जानबूझ के वे जब गुस्सा करते हैं वो भी शिष्य के लाभ के लिए हैं, कभी प्रेम से बोलते वो भी शिष्य के लाभ के लिए हैं, कभी गुणगान करते वो भी शिष्य के लाभ के लिए हैं, और कभी उसको कठोर शब्द प्रयोग करके समझाते हैं वो भी शिष्य के लाभ के लिए हैं। तो शिष्य के स्तर अनुसार जो गुरु है उसे उपदेश करते हैं। तो एक सिख गुरु की एक सुंदर कथा आती है, तो दोनों कथा एक साथ मैं बताऊंगा किस प्रकार वो जो भी कार्य करते हैं वो शिष्य के लिए या समाज के हित के लिए होता है, और दूसरा वो उसके स्तर के अनुसार उपदेश करते हैं। तो पहली कथा में एक बार बहुत बड़े जो संत हैं सिख संप्रदाय के, वो अपने कुछ शिष्यों के समूह के साथ जा रहे थे, और एक गांव में जाते हैं तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत वहां पर किया जाता है, सारे गांव के लोग आके उनका स्वागत करते हैं, शिष्यों की सारी व्यवस्था करते हैं, और वो गाँव में गए नहीं, कुछ नहीं हुआ तब तक सारे लोग जब देखते कि संत गांव में आए शिष्यों के साथ में, तो उनकी सारी व्यवस्था अच्छे से की जाती है। जैसे गुरु अपने शिष्य को बोलने लगते कि भाई हम वैरागी हैं जाके भिक्षा मांगेंगे, उससे पहले गांव के लोग जो है सारा खाना पीना लाके उनके दे देते हैं, और जो गुरु है वो रोज इस प्रकार से भिक्षा मांगने से पहले उनको खाना आ जाता था। फिर साधु है तो थोड़ा कथा करने लगते हैं सारे गांव के कल्याण के लिए, रोज कथा चालू हो जाते, सारे गांव के लोग आके बैठ जाते, खुशी खुशी कथा सुनते हैं। और कुछ समय के बाद साधु बोलते थे, बहुत हो गया, सारे अच्छे उपदेश आपको सुना दें, तो मैं आगे अभी आगे चलता हूँ। तो गांव के सारे लोग जमा जाते हो जाते कि अभी संत निकल जा रहे, तो उनको विदा करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। तो सारे जमा होके बोलते, जाते जाते कुछ आशीर्वाद देखे जाइए। तो संत बोलते, इतना सबने अच्छे से सेवा किया। तो जाते जाते शाप देते कि इस गांव में अकाल पड़े। तो सारे लोग एकदम भ्रमित हो जाते कि भाई इतना सेवा किया सारे संतों का, शिष्यों का, इतना प्रसन्न रखा, और जाते जाते ये क्या बोल गए। और वो गांव वालों से ज़्यादा उनके शिष्य बिवल्डर हो गए कि गुरुजी ने ये क्या आज्ञा दे दिया कि इतना प्रसन्न रखा इन लोगों ने, उनको आशीर्वाद दिया, इस गांव में अकाल पड़े। और फिर आगे चलते गए, कुछ पूछ नहीं पाए, पहली बार प्रसंग था। दूसरे गांव में चले जाते हैं, वहाँ पे वो बता के जाते कि हमारे गुरु जो है, कुछ शिष्य आगे जाके बोलते आ रहे हैं, बड़े आचार्य हैं, लेकिन गांव के लोग उन्हें स्वागत करने भी नहीं आते। और फिर थोड़ी देर बाद वो किस प्रकार से गांव में पूछ पूछ पे एक धर्मशाला ढूंढते कि गुरु जी आने से पहले कम से कम रहने की व्यवस्था हो, गाँव वाला तो कोई आता नहीं है देखने। तो शिष्य मिल के पहले से थोड़ा सा एक धर्मशाला तो मुश्किल से ढूंढ के उन्हें गुरु को उधर रखते हैं। अभी तक कोई गाँव वाला वहाँ पे फिर भी नहीं आया था। अभी गुरु जी पूछते, चलो स्नान वगैरह करके गाँव में कुछ मांग लेते, भिक्षा मांगने सारे शिष्य चले जाते हैं। तो भिक्षा भी बहुत मुश्किल से, लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे कि कोई आया है साधु कुछ देना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, उसमें मुश्किल से वो अपना रोज का खाना पीना कैसे तो बना पा रहे थे। फिर गुरु बोलते हैं कि चलो गाँव वालों को बुलाओ, थोड़ा कथा करेंगे, यहाँ पर आए उनके गाँव में हम रहते हैं, कुछ तो उन्हें लाभ होना चाहिए। तो कुछ समय बाद शिष्य बोलते, कोई आने को उनको इच्छा ही नहीं है, हम बहुत सारे लोगों को बताए फिर भी। ऐसे कुछ दिन चले जाते हैं, साधु है अपने शिष्यों को केवल कथा सुनते हुए जाते हैं, निकलते हैं। कुछ समय के बाद सोचते, चलो काफ़ी समय हो गया, गांव के लोग आ भी नहीं रहे, फिर भी हमने प्रयास किया है, तो अगला गांव चले जाएंगे। फिर संत सोचते हैं कि जाने से पहले इन लोगों को भी कुछ आशीर्वाद देना चाहिए। और फिर अपने शिष्य को बोलते, चलो इतने दिन यहाँ रहे, गाँव वालों ने कुछ किया नहीं किया जो भी है, लेकिन अभी जा रहे हैं तो कम से कम हम इतने दिन इनके गांव में रहे तो सही, कम से कम तो उन्हें कुछ आशीर्वाद हम दे देते हैं। तो सब गाँव वालों को बुलाओ कि कुछ आशीर्वाद मैं देना चाहता हूँ उनको। तो शिष्य जाके गांव में बुलाते, भाई इतने दिनों से गुरु जी हमारे थे, आप आए नहीं, अभी तो आ जाओ। उनकी इच्छा एक बार, अंत का दिन अभी निकलने वाले। तो कुछ लोग फिर भी मुश्किल से, गाँव वाले तो पूरा नहीं आते, आ जाते हैं और साधु को बोलते, क्या जो भी आशीर्वाद आपको देना है दे दो। और संत उन्हें बोलते कि इस गांव में और संतुष्टि, यहाँ पर धन संपत्ति आए, समृद्धि आए, और फिर निकल जाते हैं। अब सारे शिष्य एकदम और भी भ्रमित हो जाते कि प्रथम बार जब गांव में गए, उन्होंने इतना स्वागत किया, इतना सुविधा किया, इतना सेवा किया, उन्हें आशीर्वाद दिया, यहाँ पर अकाल पड़े। और दूसरे गाँव में इन्होंने कुछ स्वागत तो छोड़ दो, कुछ बेसिक जो नीड्स है उसके लिए भी प्रयास नहीं किया, कथा सुनने भी नहीं आए, और उनको आशीर्वाद दिया कि इस गांव में समृद्धि आते रहे। तो गुरु जी को पूछते, इस प्रकार से क्यों आशीर्वाद दिया आपने? तो गुरु बोलते हैं, वास्तविक रूप में अगर मैं दूसरे गांव को बोलूंगा अकाल पड़ जाए, तो ये लोग अकाल पड़ेगा तो इस गाँव को छोड़ के कहीं और अलग अलग गाँव में अपने जहाँ पे रिलेटिव इधर उधर चले जाएंगे, और एक भी व्यक्ति के अंदर कुछ संस्कार नहीं है, ना गुरु का साधु का स्वागत करना जानते हैं, या ना धान धर्म करना जानते हैं, ना कोई कथा सुनना जानते हैं। ऐसे लोग निकम्मे अगर गांव छोड़ के अलग अलग जाएंगे तो सारे गांव को प्रदूषित कर देंगे। तो उससे अच्छा कि एक ही गांव में रहेंगे, थोड़ा उनको समृद्धि मिलेगा, तो यहाँ से कहीं और नहीं जाएंगे। और जो पहला वाला गाँव था जहाँ पर सारे सुसंस्कृत लोग थे, जो साधु का स्वागत करना जानते हैं, सारे वैष्णव को खिलाना पिलाना जानते हैं, कथा सुनना जानते हैं, सारे अच्छे कार्य संस्कार साथ में लेके बैठे हैं, ये सारे लोग एक गांव में रह के क्या फ़ायदा है? अलग अलग गांव जाएंगे तो हर गांव को वो अच्छा बनाएंगे। तो इसलिए मैं उन्हें आशीर्वाद दिया कि वहाँ पे अकाल पड़ना चाहिए, क्योंकि अकाल पड़ेगा तो हर एक व्यक्ति ढूंढेगा, चलो मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स है, मेरे वहाँ पे रिलेटिव्स, अलग अलग गाँव में चले जाएंगे। और जितने भी अच्छे उपदेश सुने हैं वो सारे लोगों को बताएंगे ताकि हर गांव जो है इस प्रकार से अच्छा बनता रहे। तो इस प्रकार जो गुरु हैं, संत हैं, वो समाज के कल्याण के लिए, शिष्य के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और जो भी वो आशीर्वाद दे या शाप दे वो शिष्य के फायदे के लिए ही होता है। शास्त्रों का हम दसवें स्कंद का भी कथा सुनते हैं किस प्रकार जब नल कुबेर और मणिग्रीव अपनी भ्रमित अवस्था के कारण जब सारे स्त्रियों के साथ इंद्र तृप्ति कर रहे थे, नारद मुनि जब आए तो वो प्रणाम करना भूल गए, और उसी समय सारी स्त्रियां जो है वो प्रणाम भी करते हैं, वस्त्र भी धारण करते हैं, परंतु यह अपनी उसी अवस्था में खड़े रहते हैं और साधु का आदर करना भूल जाते हैं। और नारद मुनि समझ जाते हैं कि पूरे अपने ऐश्वर्य के कारण मदमस्त हो चुके हैं, तो शाप देते कि आप जाके जो है पेड़ बन जाइए, वृक्ष बन जाइए। तो नारद मुनि का ये शाप भी एक तरफ से उनके लिए बड़ा वरदान हो गया कि उनके पास जो ऐश्वर्य था वो तो निकल गया, लेकिन जब आके वो विनती करते हैं, नारद मुनि को क्षमा मांगते हैं, तो दूसरा आशीर्वाद भी मिल गया कि सालों तक आप जो है ब्रज में जाके वृक्ष के रूप में रहेंगे और स्वयं भगवान कृष्ण जब आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे। तो जब शाप मिला वो भी उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए ही मिला था। तो इस प्रकार जो संत है वो शाप दे या आशीर्वाद दे वो एक शिष्य के फायदे के लिए ही होता है। और दूसरी कथा अंत की बताऊंगा कि किसमें जिसमें किस प्रकार वो व्यक्ति के कल्याण के लिए उसके स्तर के अनुसार जो है आशीर्वाद देते हैं। तो यह कथा एक लोक कथा के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है कि एक बार एक संत अपने शिष्यों को लेके जाते हैं और बताने के लिए कि चलो कुछ आपको दिखाना है, तो जाते जाते वो एक राजपुत्र से मिल जाते हैं, और राजपुत्र जैसे आता है प्रणाम करता है, इतने सारे संस्कार उसको तो सिखाए हैं, तो वो जैसे प्रणाम करता है गुरु जो है उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीव भव, कि आप जो है इसी प्रकार दीर्घायुष्य जिए। तो शिष्य बोलते हैं कि गुरु महाराज इनको आपने ये क्यों आशीर्वाद दिया चिरंजीव भव कि इसी प्रकार वो जीता रहे। तो जो गुरु है समझाते क्योंकि ये अभी राजपुत्र है, इसके पास पूरा राज्य है, आनंद लेने की सारी सुख सुविधाएं हैं, और नैसर्गिक रूप से जब ये सुख सुविधाओं का लाभ उठाते उठाते कुछ पाप कर्म में भी लगता जाएगा, क्योंकि राजा है, कभी प्राणी हत्या करेगा, कभी कुछ करेगा, और जब मृत्यु हो जाएगी तो सारे पापों का फल भुगतने के लिए उसको हो सकता है नरक में भी जाना पड़े। तो इसलिए मैं उसको चिरंजीव भव आशीर्वाद दिया ताकि जो आनंद का खुशी का जीवन अभी जी रहा है वो अभी जी सकता है, बाद में कितना भुगतना पड़ेगा पता नहीं। फिर आगे चलते चलते जाते हैं, एक मुनि पुत्र तपस्वी ब्रह्मचारी से मिलते हैं, और फिर उसे वो भी आता है प्रणाम करता है, और उस मुनि पुत्र को वो आशीर्वाद देते हैं माँ जीव तुम जो है अभी मर जाओ। तो फिर शिष्य पूछते इस प्रकार क्यों आशीर्वाद दिया, तो गुरु जी बोलते देखो इतना तपस्या कर रहा है, इसका इतना अच्छा चेतना है, अभी मर जाएगा तो अगला जीवन जो है खुशी खुशी जिएगा, पता नहीं भविष्य में इतना तपस्या करते करते अगर मार्ग भ्रष्ट बाद में कुछ कारण से हो जाएगा तो जो शुद्ध चेतना उसकी अभी चल रही है वो नहीं रहेगी तो उसका पतन हो जाएगा, उससे अच्छा है अभी एक अच्छी चेतना में है तपस्या कर रहा है उससे भी उसे मुक्ति मिल जाएगी, इतना कष्ट हो रहा है उससे, और अगला जीवन जो है उसे सुख प्रदान करेगा, इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया माँ जीव कि तुम जीवो मत मर जाओ। फिर आगे गुरु जी जाते हैं और वहाँ पर एक कसाई से मिलते हैं, कसाई भी आ गए साधु तो आशीर्वाद मांगते हैं, तो वहाँ पे गुरु जो है उसे आशीर्वाद देते हैं कि माँ जीव माँ मर कि तुम जो है जियोगे तो भी दुख ही दुख है, मरोगे तो भी दुख ही दुख है, तो जीना मरना तुम्हारे लिए मतलब दुख का ही कारण है, क्योंकि जब जी रहे हो तो इतने सारे पाप कर रहे हो लगभग नरक के समान ही जीवन है तुम्हारा, और इतने पाप करते 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 जियोगे मर जाओगे तो इतने भयानक नरक में जाना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको दुख ही भोगना है। तो इसके लिए उसे उस प्रकार से आशीर्वाद दिया जाता है। और फिर आगे जाते हैं, वहाँ पे उन्हें भक्त मिलते हैं, तो वहाँ पे भक्त को वो आशीर्वाद देते हैं, जीवो वा मरो वा, तुम जीवो या मरो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का अर्थ उनका था कि अभी भी आप इस प्रकार से भगवान का भक्ति कर रहे हो, अभी भी इतनी सारी शास्त्र अध्ययन वैष्णव सेवा करके आप प्रसन्न है भगवान की सेवा में, तो बहुत ही सुंदर जीवन आपका चल रहा है। और ये करते करते आप जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद आप भगवान के धाम चले जाओगे, तभी भी आपको आपके जीवन में खुशी ही खुशी मिलने वाली है, क्योंकि भगवान का सेवा जो शाश्वत अभी कर रहे हो वही सेवा भविष्य में भी करने वाले हो। तो मरोगे या जीवोगे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसलिए जीवोवा मरोवा। तो इस प्रकार जो गुरु है अपने शिष्य का स्तर समझते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। तो जब भी इस प्रकार गुरु का जीवन में कुछ आशीर्वाद मिलता है, सूचना मिलती है, तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक उसका पालन करना चाहिए। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में और भी कुछ बातें बताते हैं कि किस प्रकार राजहंसाणाम शब्द का प्रयोग करते हुए कि जो राजहंस परमहंस शरणम, कि व्यक्ति को जो है परमहंस शरणम, जो परमहंस भक्त है उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। और हंस परमहंस शरणम या हंस शरणम का जो अर्थ है पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो संत है वो पहले कुटिया में रहते थे और कुटिया में रह के वहाँ पे शास्त्र अध्ययन और उपदेश हरिणाम भक्ति भगवान का दिव्य सेवा में रहते थे। तो इसलिए व्यक्ति को जो है ऐसे हंस शरणम ऐसे कुटिया में जाके उनका आश्रय लेना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि समय के साथ जो है अभी भक्त लोग जो है कुटिया में नहीं रह पाते, या कभी कभी उन्हें प्रचार कार्य के लिए कुछ सुविधाओं को स्वीकार भी करना पड़ता है, तो भक्तों को इस बात से जो है विचलित नहीं होना चाहिए। कभी कभी प्रभुपाद जी के बारे में भी कहा जाता था कि स्वामी जी उनका एक नाम जेट एयरवेज स्वामी भी था कि आप जो है सदा एयरवेज से घूमते रहते हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछ भी लिया कि आप इतनी सुविधाओं को क्यों स्वीकार करते हैं, तो प्रभुपाद बोलते मैं क्या करूँ, इच्छा तो नहीं है लेकिन आप इतनी तीव्रता से नरक की ओर जा रहे हैं तो आपको बचाने के लिए मुझे आपसे ज़्यादा तीव्रता से भागना पड़ता है, इसलिए आप जब एयरवेज में जाते हैं तो मुझे जेट एयरवेज में जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी नरक के जाने की दिशा इतनी तीव्र है कि उसको रोकने के लिए मुझे उससे ज़्यादा तीव्रता से कार्य करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी कभी भक्तों को प्रचार कार्य के लिए हैं कुछ सुविधाओं को स्वीकार करना पड़ता है। और उसी प्रकार जो है तात्पर्य में आगे प्रभुपाद जी जो है इस चीज़ को बताते जाते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पहले गुरु थे जिन्होंने इस कृष्ण भक्ति को प्रचार करने के लिए एक संस्था का स्वरूप दिया और बहुत सारी सुविधाओं को उन्होंने खड़ा कर दिया जिससे कि लोग जो है वहाँ पर आ सके और भगवान का भक्ति का श्रवण कर सके। तो प्रचारक सुविधाओं को जब भी स्वीकार करता है या गुरु जो है जब भी इन सुविधाओं को स्वीकार करते इस बात का ध्यान रखते हैं कि केवल और केवल उसका उद्देश्य यही है कि भक्त लोग वहाँ पर आके या साधारण जीव जो है वहाँ पर आके अधिक से अधिक भगवान के बारे में श्रवण कर सके। तो सुविधाओं का मतलब भोग करना नहीं है, तो सुविधाओं का केवल उद्देश्य यही है कि और अच्छे तरीके से भगवान का नाम का जप भगवान की लीलाओं का श्रवण जो है अच्छे तरीके से कर सके। और केवल उसी उद्देश्य से जो है सुविधाओं का जो ये परमहंस भक्त है वो स्वीकार करते हैं ताकि अधिक से अधिक रूप में वो प्रचार कर सके, लोगों को इस भौतिक दुखों की विश्व से बाहर निकाल कर भगवान की शरणों में लेकर जा सके। तो ये बहुत सुंदर एपिसोड चल रहा है राजा प्राचीनी भरी जो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं और अगले 3 वर्ष भी यहाँ पे कथा के लिए बताए थे, तो केवल मैं श्लोक और उनका अनुवाद पढ़ लूँगा ताकि यह जो सेशन है आज के कथा का पूर्ण हो जाए। तो 97वें श्लोक में राजा भरी प्राचीनी भरी कह रहे हैं संशयत्र तु मे विप्र संचिन्नोस्तो कृतो महान् ऋषियोपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रिय वृत्तयः। हे ब्राह्मण, आपके आदेशों तथा मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त करने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में विरोधाभास जान पड़ता है। मैं अब भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूँ। मुझे पहले इनके विषय में कुछ संशय थे, किंतु आपने कृपा करके इन सारे संशयों को मिटा दिया है। अब मैं समझ सकता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में कैसे मोहग्रस्त होते हैं। निसंदेह इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगला श्लोक है, कर्मण्यारभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्रानेन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते यदश्नुते। इस जीवन में जीव जो कुछ भी करता है उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है किस प्रकार। अगला श्लोक, यदि वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत् क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते। वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है, किंतु व्यवहारिक रूप में यह देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वह तो नष्ट हो चुका होता है। अंततः उस कर्म के अच्छे या बुरे फल को अन्य शरीर में भोगना किस प्रकार संभव है। तो इन तीन और प्रश्नों के उत्तर जो है धीरे धीरे जो नारद मुनि हैं विस्तार में प्राचीन भरी जो राजा हैं उन्हें समझाएंगे। तो अगले श्लोक से हम नारद मुनि के जो उत्तर है उसके बारे में कथा सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी की कुछ टिप्पणी है? प्रश्न है तो यस महावात्र।
हरे कृष्ण। तो यहाँ पर राजा प्राचीनी वरी जब नारद मुनि से समझ जाता है कि अभी तक जिन शिक्षकों ने मुझे सिखाया वो सब गलत था, अब आप जो बता रहे हो मुझे समझ में आ रहा है कि वो सबसे सही है। तो ऐसे समय तो हम सब भी ऐसे ही एक मोड़ से गुजरते हैं कि पहले हमारे जीवन में लोगों ने हमें कुछ सिखाया है, भक्ति में आने के बाद हम शिक्षकों से द बेस्ट क्या है उसके बारे में सीखते हैं। तो उस मोड़ पर हमारा एटीट्यूड जो पुराने शिक्षक है उनके प्रति क्या होना चाहिए?
वास्तविक में जीवन में अलग अलग स्तर पर अलग अलग गुरु हमें प्राप्त होंगे, और जो भी हमें सिखाता है भले ही पहले हमें किसी ने शुद्ध भक्ति के बारे में न बताया हो, क्योंकि उन्हें ही शायद उसके बारे में पता नहीं है, परंतु एक पग जो है हमें भगवान के प्रति जाने के लिए उन्होंने मदद की है। तो रिस्पेक्ट की भावना, ग्रैटिट्यूड की भावना तो हमें उनके बारे में भी होना चाहिए, परंतु साथ ही साथ हमें उनका त्याग करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जब जो वास्तविक गुरु हैं वो हमें सच्चे ज्ञान के बारे में जब बताते हैं तो उस गुरु का हमें त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि हमें उनके बारे में हम टीका करें, उनके बारे में कुछ गलत कहें, क्योंकि समय के साथ उन्होंने भी हमें मदद की है। तो कृतज्ञ की भावना जो है हमें सदा रहनी चाहिए। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन से हम देखते हैं कि इतने सारे गुरुओं से मिले, किसी ने भी वास्तविक भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में उन्होंने बताया नहीं। बहुत सारे चमत्कारों के बारे में बताया, सिद्धि प्राप्ति करने के बारे में बताया, बहुत सारे चीज़ों को। तो वो अंत तक सारे गुरुओं का जो भी उन्हें प्राप्त हुए उनके प्रति कृतज्ञ रहे कि आपके कारण मुझे भगवान के प्राप्ति के मार्ग में मदद हुई, और साथ ही साथ उनका कभी स्वीकार भी नहीं किया उन्होंने, जो भी बताते थे सुनते थे करते जाते थे, बट अंदर से जो आवाज आई सुनते गए। जब श्रील प्रभुपाद जी मिले तो कभी भी परम पूज्य राधानाथ महाराज जी जो है अपने पुराने जीवन में जिन्होंने भी उन्हें मदद किया उनके बारे में टीका नहीं करते, परंतु उनका कुछ पालन भी नहीं करते हैं। जो अंदर से और श्रील प्रभुपाद जी जो गुरु के रूप में आए, जो उपदेश दिए वही उन्होंने स्वीकार किए। तो इस प्रकार एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखना चाहिए, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए, परंतु जो शुद्ध भक्त हैं उनकी आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। श्रील प्रभुपाद की।